ओम शांति। अभी भाई सब कुछ देर पहले एक घटना सुना रहे थे आपको हमारे बारे में, थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई कर दूं उसको। वास्तव में वो ऐसा नहीं था कि वाह वाह की कोई बात थी। लौकिक पिताजी ने शरीर छोड़ा था, ही एक्सपायर्ड। लेकिन जो लौकिक मदर फादर का लॉस होता है, वो घटना बड़ी होती है ना, छोटी तो नहीं होती। लेकिन उस घटना से रिकवर करने की शक्ति मुझे इस ज्ञान योग ने दिया। तो उनका कहने का भाव ये था, ऐसा नहीं कि वो चले गए तो वाह वाह है, नहीं, लेकिन वो जाने के बाद जो मुझ आत्मा को शक्ति चाहिए थी वो परमात्मा से आज दिन तक मिल रही है। दैट्स द पावर ऑफ मेडिटेशन। जब हम देखिए, हम इसको मन की शक्ति कहेंगे ना, और ये हम सभी के मन की शक्ति बढ़ सकती है। लेकिन मन की शक्ति दो बातों से बढ़ती है, एक है हमारे अपने सत्य स्वरूप से हम बार बार एकाग्र होकर योग लगाएं, अपने आत्मिक शक्ति से कनेक्ट होना सीख लें, क्योंकि हमारे अंदर बहुत खजाना है। और दूसरा, वो जो परमात्मा शक्ति है ना, वो बहुत सर्वशक्तिवान है। आज अगर हमारे अंदर कुछ भी कमी है जिसको हम पार करना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो ईश्वर को याद करना भी आना चाहिए, क्योंकि ईश्वर को याद करने से शक्ति मिलती है। लेकिन आज भगवान के बारे में ही बहुत कंफ्यूजन है। कोई कहता है वो नीचे है, कोई कहता है ऊपर है, कोई कहता है सब जगह है, कोई कहता है वो है ही नहीं, कोई कहता है वो हमारे अंदर है। आखिर सत्यता क्या है? आज हम उस सत्य को जानेंगे, समझेंगे। और दूसरा, आज लोग भगवान को कब याद करते हैं? हाँ जी, जब कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, है ना, और जब कुछ चाहिए हो तभी याद करते हैं ना। और याद भी कैसे करते हैं, कैसे याद करते हैं? हे भगवान, मेरा बच्चा पास करा दो, मेरा मकान बन रहा है, जरा देख लो लेंटर डल रहा है आज, मेरा ट्रांसफर करा दो, मेरा ट्रांसफर रुकवा दो, मेरा प्रमोशन करा दो। अगर आप ये काम कर देंगे तो उसके बाद, पहले नहीं, जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं, अगर आप ये कर देंगे, जिस दिन ये पूरा होगा उस दिन हम कुछ ऐसा करेंगे आपके मंदिर में आके, ऐसे याद करते हैं ना। या फिर हो सकता है, देखिए सभी ऐसा नहीं करते हैं, पर ज्यादातर ये देखने में आ रहा है। और कभी कभी कुछ लोग भगवान को याद तो करते हैं, पर क्यों करते हैं? डर से करते हैं, भय से करते हैं। चलो कुछ ना से तो कुछ अच्छा, थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। बिल्कुल नहीं करेंगे तो भगवान जी नाराज होकर हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ऐसे तो हमारी ईश्वरीय याद की क्वालिटी है। आज हम जानेंगे उस परमात्मा शक्ति के बारे में। देखिए, जैसे आज किसी से पूछो, अच्छा ईश्वर कौन है? क्योंकि जिसको याद करना है, जिस परमात्मा शक्ति को याद करके हमें शक्ति लेनी है, मनोबल बढ़ाना है, आत्मा के गुणों को बढ़ाना है, इनर पावर्स को बढ़ाना है, तो जहां से लेना है उसके बारे में पता तो होना चाहिए, है ना? आज किसी से पूछो भगवान कौन है आपके लिए, अल्लाह ईश्वर गुरु कौन है, तो कहेंगे हमारे लिए तो राम जी सब कुछ है। कोई कहेगा नहीं नहीं माता रानी सब कुछ है। कोई कहेगा हमारे लिए तो शिव जी है। दूसरा कहेगा हमारे लिए तो क्राइस्ट ही सब कुछ है, क्राइस्ट यू द गॉड एंड लॉर्ड फॉर मी। कोई कहेगा हमारे लिए अल्लाह ही सब कुछ है। लेकिन फिर लास्ट में कहते हैं आखिर तो भगवान एक ही है ना, कहते हैं ना भगवान एक है, भगवान बहुत सारे नहीं होते, भगवान तो एक ही होता है। तो उस एक परमात्मा की सत्यता को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, जीसस क्राइस्ट अगर क्रिश्चियनिटी को अगर हम देखें तो क्राइस्ट ने क्या कहा? उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा आई एम द गॉड एंड द लॉर्ड यू प्लीज फॉलो मी, कभी भी नहीं कहा। वो इस धरती पर जब आए तो उन्होंने मैसेज क्या दिया था? गॉड इज लाइट, गॉड इज लव, आई एम द सन ऑफ द गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड, आई एम हियर टू गिव यू हिज मैसेज, ऐसे ही बोला था ना, मैं भगवान का संदेशवाहक पुत्र हूं, आई एम द सन ऑफ द गॉड। इसका मतलब वो सन है तो उसका कोई पिता तो होगा ना। गॉड इज लाइट, गॉड इज लव, लाइट का महत्व क्रिश्चियनिटी में भी है। ऐसे ही अगर हम मक्का मदीना में, आपने कभी फोटो तो देखी होगी मक्का की, है ना, वहां पर किसी की तस्वीर या मूर्ति नहीं है, वहां पर एक गोल सा काले रंग का पत्थर है जिसको संगे अस्वद पत्थर बोला जाता है। और संगे अस्वद पत्थर का मतलब होता है पवित्र पत्थर, और पवित्र पत्थर को चूमकर वो कहते हैं नूरे इलाही, मतलब अल्लाह नूर है। नूर का मतलब क्या होता है? नूर का मतलब क्या होता है? ज्योति, प्रकाश, कहते हैं ना मेरी आंखों का नूर हो। नूर का मतलब ज्योति हो, प्रकाश हो, रोशनी हो, चमक हो, यही होता है ना नूर का मतलब। सिख धर्म में भी गुरु नानक बाबा जी आए, आप जब भी गुरु नानक देव जी की तस्वीर या श्री कृष्ण की तस्वीर या जीसस क्राइस्ट के मुखमंडल को देखते हैं तो उन सबके चेहरे से क्या झलकता है, क्या दिखाई देता है? प्योरिटी, सुखद शांति, सन्नाटा नहीं दिखता उनके चेहरे से, एक सुखद शांति दिखती है। और दूसरा, लगन की मगन अवस्था दिखती है। उन्होंने भी हमेशा क्या कहा? उन्होंने कहा एक ओंकार निराकार, अर्थात वो एक है और वो निराकार है। निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई शारीरिक आकार न हो। मैं उसकी ओट में रहता हूं, इसका मतलब किसी ने कहा वो लाइट है, किसी ने कहा वो नूर है, किसी ने कहा वो निराकार है। और हिंदू धर्म में जब शिव की पिंडी की बारी आती है तो शिव की पिंडी को एक और नाम से बहुत प्रसिद्धि है। कौन से नाम से जाना जाता है? ज्योतिर्लिंगम। 12 ज्योतिर्लिंगम बहुत प्रसिद्ध है भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में। तो ज्योतिर्लिंगम, लिंगम का मतलब होता है सिंबल, चिन्ह, और ज्योति का वो सिंबल है तो, और वैसे भी दिखाते हैं ना शिव की पिंडी में से, ज्योतिर्लिंगम में से बहुत सारा प्रकाश निकलता हुआ दिखाते हैं। जब भी कोई नाटक या कोई सीरियल हम लोग बचपन में जैसे कोई चीज देखते थे, कथाएं देखते थे, तो उसमें दिखता था शिवलिंग में से ढेर सारा प्रकाश निकलता हुआ। कोई, किसी ने कहा वो ज्योति है, किसी ने कहा वो लाइट है, किसी ने कहा नूर है, किसी ने कहा निराकार है, कह तो सब एक ही बात रहे हैं, है कि नहीं? आप लोग यहां हैं, सभी यहां हैं, कौन कौन यहां है मन बुद्धि से? अच्छा, थैंक यू। अच्छा, तो कहने का भाव क्या है? सारी विश्व की आत्माएं, चाहे किसी भी, क्योंकि देखिए भगवान किसी एक धर्म के नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ने धर्म नहीं बनाए थे, और ना ही वो जो धर्म पिताए इस संसार में आए, धर्म गुरु इस संसार में आए, उनका भी कोई लक्ष्य नहीं था धर्म बनाने का। उन्होंने तो वैल्यूज को प्रमोट किया, उन्होंने तो जीवन के मूल्यों को सामने रखा इंसान के। सबने क्या कहा? सभी मैसेंजर्स आए, धर्म पिताए आए, उन्होंने कहा वो लाइट है, उन्होंने कहा वो निराकार है, उन्होंने कहा वो ज्योति है, उन्होंने कहा वो नूर है, सबने यही संदेश दिया। लेकिन इंसान की एक फितरत है, जो चीज हमें इन आंखों से दिखाई पड़ती है उसको फॉलो करना हमारे लिए सहज होता है, और जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती उसके लिए दो चीजें लगती हैं, पुरुषार्थ और समय, मेहनत और समय, जो आजकल कम लग पाता है। तो सबने क्या किया? मैसेज को छोड़ के मैसेंजर को पकड़ लिया, मैसेज को छोड़ के मैसेंजर्स को पकड़ लिया। अच्छा ठीक है, चलो मैसेंजर को भी पकड़ा, कम से कम ठीक से तो पकड़ते। अगर मान लीजिए मैं क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती हूं, फॉलोअर का मतलब क्या होता है? फॉलोअर का मतलब होता है कि जो मेरे गुरु ने, जो मेरे सामने जो संदेशवाहक, जो मैसेंजर्स आए, जो धर्म पिताएं आए, जिन्होंने परमात्मा का संदेश सामने रखा, उन्होंने जो कहा और किया वही मुझे कहना और करना चाहिए था। उन्होंने कहा गॉड इज लाइट, हमने कहा आप लाइट को मानो, हमारे लिए तो आप ही सब कुछ हो, ट्रायंगल बना दिया। किसी ने कहा वो निराकार है, हमने कहा आप निराकार को मानो, हम तो आप ही को मानेंगे। किसी ने कहा वो अल्लाह नूर है, सबने पैगंबर को तो पकड़ लिया लेकिन पैगाम छोड़ दिया कि वो नूर है। उस नूर से, उस लाइट से, उस निराकार से हम कितना कनेक्ट होते हैं आज, जितना हमारे सामने हमारे धर्म पिताएं कनेक्ट हुए, तब वो इतनी प्योरिटी के धनी थे, तब वो इतनी शांति और वैल्यूज के धनी थे, हम क्यों ये नहीं कर पाए, है ना? तो वास्तव में देखा जाए हर धर्म की आत्मा का जो मात पिता है उसका सत्य स्वरूप क्या है, जो एक परमात्मा जिसको कहा जाता है, जिसके लिए सभी इस संसार में जो संत आत्माएं आए, महात्माएं आए, आप देखो साईं बाबा जी को भी आज पूरी दुनिया में कितनी मान्यता है, बहुत प्यार से, बहुत भावना से लोग पूजते हैं उनको। क्या कभी उन्होंने कहा मैं भगवान हूं आप मेरी पूजा करो, मैं ही सबका मालिक हूं, कहा? कभी कहा उन्होंने सबका मालिक मैं? क्या कहा? सबका मालिक एक अल्लाह मालिक है। सबने ऊपर की ओर इशारा किया, हरेक की तस्वीर ऊपर की ओर इशारा करती है, हरेक की मूर्ति इशारा करती है कि हम सब किसी के हैं, किसी की संतान है, लेकिन हम उधर कनेक्ट नहीं हो पाए, स्थूल नेत्रों से जो दिखा उनसे कनेक्ट हुए, है ना? तो एक ये बात है। दूसरा, परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है, जैसे आप देखो कभी कभी लोग सोचते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, हमारे अंदर ही भगवान है। अच्छा, अगर आत्मा ही परमात्मा होती, अगर हमारे अंदर भगवान होते, आज किसी से पूछो भगवान जी कहाँ है, ईश्वर कहाँ है, तो कहेंगे अजी कहाँ नहीं है, सब जगह भगवान तो है ना, ऐसा कहते हैं। पर अगर सब जगह भगवान होते, कण कण में ईश्वर होते, फिर तो आपके अंदर भी भगवान होना चाहिए, मेरे अंदर भी भगवान होना चाहिए, तो फिर ये तो भगवानों की दुनिया होनी चाहिए थी। इतने सारे भगवान एक जगह बैठे हैं और दुनिया की ये हालत, इतने सारे भगवान इस धरती पर मौजूद हैं और इंसान की ये हालत जो हो रही है। आज भगवान धरती पर नहीं है, उपस्थित नहीं है, और इंसान भगवान से बहुत विमुख हो गया है, इसलिए यह हालत हो गई। अच्छा, अगर हमारे अंदर भगवान जी होते, अगर आत्मा ही परमात्मा, देखिए आत्मा परमात्मा नहीं है, हमारे अंदर भगवान नहीं है, सत्यता क्या है? ईश्वर की, परमात्मा भगवान की याद जरूर हम सबके अंदर बसती है, हाँ उसकी याद हम सबके मनों में बसती है, पर वो खुद नहीं है। जैसे एक चिड़िया का बच्चा कैसा होगा देखने में? चिड़िया का बच्चा कैसा होता है? चिड़िया जैसा। शेर का बच्चा, इंसान का बच्चा, परमात्मा का बच्चा? एक्चुअली जो जिसकी संतान होता है वो देखने में बिल्कुल रूप उसका वैसा ही होता है ना, गुण भी वैसे ही होंगे ना। पंछी का बच्चा पंछी जैसा, जानवर का बच्चा जानवर जैसा, इंसान का बच्चा इंसान जैसा, भगवान का बच्चा भगवान जैसा, भगवान नहीं भगवान जैसा। तो अगर हम ये कहते हैं कि हम आत्माएं ज्योतिर्मय बिंदु स्वरूप प्रकाश शक्ति हैं, हमारी इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मिक ऊर्जा पॉइंट ऑफ लाइट है, नूर स्वरूप है, तो जाहिर सी बात है ये आत्मा परमात्मा की संतान है, तो ये आत्मा भी परमात्मा की तरह होगी, तो परमात्मा का भी स्वरूप क्या होना चाहिए? लाइट स्वरूप, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप होना चाहिए ना, क्योंकि वो परम शरीर नहीं है, परम आत्मा है ना, जिसको परमात्मा कहते हैं। तो अगर हमारी आत्मिक शक्ति आत्मा लाइट है, प्रकाश है, तो वो परमात्मा भी कैसा होगा? हम सब ये मानते हैं ना कि हम ईश्वर की संतान है। किसकी संतान है? भगवान के बच्चे है ना। किसके बच्चे हैं? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, है ना। और हम क्या कहते हैं? तुम मात पिता, हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, कहते हैं ना। तो अगर वो हमारा मात पिता है तो इसका मतलब उसका रूप और हमारा रूप एक होना चाहिए, है ना। तीसरी बात, अगर हमारे अंदर भगवान होते, मान लो सब जगह भगवान होते, भगवान सर्वव्यापी होते, तो फिर कभी कभी हमें ऐसा क्यों लगता है कि चलो जी बहुत दिन हो गए, इंसान कहता है ना ऐसा कभी कभी, चलो जी बहुत दिन हो गए भगवान जी के दर्शन नहीं हुए, चलो मंदिर हो आते हैं, चलो गुरुद्वारे हो आते हैं, चलो दरगाह हो आते हैं, भगवान जी के दर्शन तो करके आए। अगर हमारे अंदर ईश्वर होता तो फिर हमें किसी अन्य स्थान की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? वो महसूसता हमको नहीं आती फिर। अगली बात, आपने कभी किसी को ये, अगर भगवान कण कण में होते फिर तो इस स्टेज के अंदर, इस टाइल के अंदर, इस फर्श के अंदर, कैबिन के अंदर, दीवारों में, सब जगह होने चाहिए थे, ठीक है। तो फिर हम कभी ऐसा कहते हैं क्या, किसी को कहते हुए सुना है आपने, हे नीचे वाले अब तो आ जा, हे आजू बाजू वाले अब तो आ जा, दुख हर जा सुख कर जा, कभी कोई कहता है ऐसा? हमेशा क्या कहते हैं, हे ऊपर वाले अब तो आ जा, जो रूखा सूखा है खा जा, सुख कर जा दुख हर जा। और हर मजहब में, हर धर्म में हाथ और नजर हमेशा ऊपर की ओर रहती है। इसका मतलब वो हमारे अंदर नहीं, कहीं ऊपर है, इसलिए उसको ऊपर वाला कहते हैं, नीचे वाला आजू बाजू वाला नहीं कहते कभी भी, है ना। अच्छा, ऐसे ही देखिए, ईश्वर जो है ना, हाँ वो स्वयं हमारे अंदर नहीं है, लेकिन ठीक उस जैसी दिखने वाली एक मूरत हमारे अंदर यहाँ बैठी है, जो इस रथ को चला रही है, जो इस शरीर को चला रही है। इसीलिए परमात्मा का ये हमारा अनुभव है कि परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है, जिसके लिए हर धर्म पिताएं, संत आत्माएं, महात्माओं ने आकर कहा वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, और सब ने कहा वो नूर है, वो लाइट है, वो निराकार है, वो ज्योति स्वरूप है, वो प्रकाशमय शक्ति है, सब ने इस ओर इशारा किया। पिता 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 है, पुत्र पुत्र है, पिता और पुत्र का संबंध बहुत समीप का है, आत्मा और परमात्मा का संबंध बहुत समीप का संबंध है, बहुत दूर वाला संबंध नहीं है, लेकिन हम एक नहीं हैं पर बहुत नजदीक हैं। जैसे आपने कईयों को सुना होगा, जैसे किसी का बेटा होता है, पुत्र होता है, बेटी होती है, पुत्री होती है, अक्सर करके देखने में अगर वो बच्चा बिल्कुल अपने माता पिता जैसा होता है, देखने में होता है ना, नेचुरली जिसने जन्म दिया उस जैसा ही दिखेंगे ना वो, तो क्या कहते हैं, अरे इस बेटे को तो देखो बिल्कुल अपने फादर की कार्बन कॉपी है, टू कॉपी है ये बेटी अपनी माँ की, टू कॉपी हो सकता है, कार्बन कॉपी भी हो सकता है, ओरिजिनल तो नहीं हो सकता ना। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है, माता पिता तो माता पिता ही है, हाँ माता पिता जैसा बच्चा दिखता है। इसी प्रकार से परमात्मा शक्ति, वो भी बहुत सुंदर चमकीला प्रकाश, बहुत तेजस्वी प्रकाश है, उसका ओजस बहुत अथाह है, अनादि है, अनंत है, सर्व शक्तियों का भंडार है, परंतु है वो भी परम आत्मा। आत्मा और परमात्मा का सबसे बड़ा अंतर यह है, आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी प्रकाश स्वरूप है, लेकिन आत्मा परमात्मा नहीं, परंतु हमारा संबंध बहुत समीप का है, दूर वाला नहीं है। तो जब तक हमें ये स्पष्टता नहीं होगी कि वो मेरा पिता, सत्य पिता, आत्मा का जो सत्य पिता है, वो कौन है, क्या है, कहाँ रहता है, कैसा दिखता है, क्या करता है और क्या बिल्कुल नहीं करता है, ये सब पता होना चाहिए ना। तभी तो हम उससे योग लगा सकते हैं, तभी तो उससे प्राप्तियां कर सकते हैं। आपको एक अच्छी बात सुनाएं? आपको पता है आज लोग थोड़ी सी शांति के लिए तरसते हैं, थोड़े से चैन के लिए तरसते हैं, थोड़े से मन के सुकून के लिए तरसते हैं, थोड़ी सी एकाग्रता के लिए तरसते हैं। जबकि हमारा जो पिता है, परमात्म शक्ति है, वो परमपिता परमात्मा शांति का सागर है, गुणों का सागर है, अथाह है भंडार शक्तियों का। और अगर हम आत्मा खुद को अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर स्मृति स्वरूप बनकर, अर्थात जो मैं हूं अपने सत्य स्वरूप में मैं एकाग्र होकर अगर परमात्मा के सत्य स्वरूप को याद करूं, तो हो नहीं सकता कि हमारे मन में शांति आए, शांति ना आए। हो नहीं सकता जो हमारी आत्मा को बल ना मिले, हो नहीं सकता। ये असंभव है, असंभव कि ईश्वर नाम की शक्ति को उसकी संतान याद कर रही है और उनका मन कमजोर है, ये हो ही नहीं सकता है। लेकिन हो रहा है, एक तरफ भगवान भगवान भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मंदिर भी जाते हैं, पाठ भी करते हैं, ज्योत भी जगाते हैं, सत्संग में भी जाते हैं, व्रत भी करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन मन पहले से ज्यादा अशांत, पहले से ज्यादा स्ट्रेसफुल, ओवरथिंकिंग, नींद की प्रॉब्लम और भी पता नहीं क्या क्या समस्या, क्या कारण है? जबकि हम भगवान को याद ही किस लिए कर रहे थे? मन की सुख शांति के लिए तो कर रहे थे, वही तो नहीं है, है ना, वही तो घट रही है। तो इसलिए ये हो नहीं सकता कि मनुष्य आत्मा अपने सत्य पिता परमात्मा को याद करे ठीक से और उसको जीवन में अंधकार मिले, ये नहीं हो सकता है, असंभव। लेकिन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा कनेक्शन ठीक नहीं है, हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। किसको कनेक्ट होना था? आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट होना है। इस मन बुद्धि संस्कार, आपने आत्मा का चैप्टर सुना होगा ना आजकल में, सुना था? आत्मा के अंदर तीन शक्तियां काम करती हैं, कौन सी? मन, बुद्धि और संस्कार। हमें अपने मन बुद्धि से योग लगाना था और वही मन भटका हुआ है। अब क्या हुआ? योग लग नहीं रहा। योग का मतलब कनेक्शन नहीं है, तो कनेक्शन नहीं है तो पावर फ्लो कैसे होगी, है ना? तो इसलिए देखिए, जिससे हमें योग लगाना है उस सत्ता को जानना तो पड़ेगा ना, पहचानना तो पड़ेगा ना, स्पष्टता तो रखनी पड़ेगी ना। इसलिए परमात्मा के सत्य स्वरूप से योग लगाने की विधि सीखनी है हम सभी को। जैसे भाई साहब ने उस घटना का वर्णन किया, ऐसे तो जीवन में बहुत सारी बातें हैं जहां ईश्वर की मदद प्रैक्टिकली मिलती है। प्रैक्टिकली ऐसा हो ही नहीं सकता कि मदद ना मिले भगवान को हम याद करें। आज इंसान बहुत सारी समस्याओं में घिरा हुआ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हावी है, प्रॉब्लम्स, उसके मन की स्थिति कमजोर और प्रॉब्लम्स हावी हो रही है। क्यों? क्योंकि मन को शक्ति बढ़ाने वाला कोई काम हम शायद नहीं कर पा रहे हैं, चाह कर भी रास्ता नहीं मिल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा, पर आज समय ऐसा है, चैलेंजेस इतने हैं, जो समय में हम आज जी रहे हैं ना, उस कलयुग के बिल्कुल अंतिम चरम में, कलयुगी जो इस समय घोर कलयुग का समय चल रहा है, इस समय की समस्याएं भी बड़ी जटिल हैं। इस समय थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी से काम नहीं चलेगा, हमारी पॉजिटिविटी का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, पर वो लाए कहां से? या तो खुद के अंदर हो इतनी ज्यादा, या अगर थोड़ी बहुत कमी महसूस होती है, अच्छा आप में से किस किस को ऐसा लगता है आज आपके अंदर पॉजिटिविटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आज भी है, आप सबके अंदर है, हम सबके अंदर है, लेकिन आप में से किस किस को ऐसा लगता है आज आपकी सकारात्मक ऊर्जा का जो भी स्तर है, जो भी लेवल है, उससे थोड़ा सा बेहतर जरूर होना चाहिए। किस किस को ऐसा लगता है? लगभग सबको है ना। कहां से लाएं? स्रोत परमात्मा है, हमारा पिता है। अच्छा, जिस पिता के कपड़े की फैक्ट्री हो, उस बच्चे को कभी कपड़े की कमी होती है? अजीब सी बात हो जाएगी ना कि अगर पिता कपड़े की फैक्ट्री का मालिक है और वो बच्चा उसके पास फटे पुराने कपड़े, तो लोग क्या कहेंगे? अरे आपकी तो पिताजी की फैक्ट्री है, कपड़ों की मालिक है वो, आप कैसे ये बात कर रहे हो? और हमारा पिता शांति का सागर है और हम एक पल मन को शांत नहीं कर पा रहे हैं। हमारा पिता खुशियों का सागर है, शक्तियों का भंडार है, आज हमारा मन भयभीत है, डर रहा है बहुत सारी बातों से। आज हमारा मन कमजोर होता है, कई बार किसी किसी बात को सामना करने की शक्ति नहीं है, सामना तो छोड़ो, सुनने की भी शक्ति नहीं है। कारण कनेक्शन, कनेक्टिविटी लूज है। उस कनेक्शन को ठीक करना ही योग है। और ये कला, ये हमको अभ्यास, पता है भगवान को कैसे याद करने से शक्ति मिलती है? जैसे कहा ना, अगर कोई ऐसे याद कर रहा है, भगवान मेरा ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये जो हम लिस्ट के साथ ईश्वर को याद करते हैं ना, इसको ईश्वर की याद नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं फरियाद। और फरियाद में शक्ति नहीं होती है, ईश्वर की याद में शक्ति होती है। तो याद कैसी होनी चाहिए? निस्वार्थ भाव से, प्यार से, प्रेम से, बड़े दिल से, रोज बिना किसी कारण के, हर कर्म के बीच बीच में हम ईश्वर पिता को याद कर रहे हैं। इसको कहते हैं ईश्वरीय याद। इस याद में शक्ति मिलती है। एवरी सिंगल टाइम, हर एक बार जब आत्मा निस्वार्थ भाव से, बड़े दिल से, प्यार से, प्रेम से, हर कर्म के बीच में, बिना किसी कारण के जब भगवान को याद करती है, एक एक बार जब ये कनेक्शन ऐसा वाला जुटता है आत्मा परमात्मा का, याद की डोर से जुटता है, तब एक एक बार ये आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। और इस बैटरी को आज बहुत चार्जिंग की जरूरत है। अच्छा ये बताइए, आपके फोन में जब बैटरी कम हो जाती है या बैटरी डाउन होने लगती है, आप दूसरे फोन से कनेक्ट करते हैं क्या? किससे कनेक्ट करते हैं? किससे नहीं, चार्जर तो माध्यम है, परंतु कनेक्ट किससे करते हैं? सोर्स ऑफ पावर, जहां पे वो बैटरी के अंदर जो पावर है ना, वो पावर कहीं आ रही हो, उससे आप कनेक्ट करते हैं। तो चार्जर है राजयोगा, मेडिटेशन, और पावर हाउस कहाँ है? परमात्म शक्ति, वो जिसका सत्य स्वरूप। हमें अपने सत्य स्वरूप में टिक कर अपने को आत्मा समझ, परमात्मा पिता को जब हम प्यार से, बिना किसी कारण के, हर कर्म में निस्वार्थ भाव से, बड़े दिल से याद करते हैं, तो हमारी आत्मा को हर बार बैटरी चार्ज होगी, अर्थात खुशी, शक्ति, शांति। और यही तो चाहिए हमको, और क्या चाहिए आज के जीवन में? और अगर ऐसा मन होगा जिसके अंदर ईश्वरीय याद की ताकत होगी, वो जब जॉब करने जाएंगे, ड्यूटी करने जाएंगे, तो वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे हर एक से? कैसे करेंगे? अच्छा ही करेंगे ना, सकारात्मकता से करेंगे ना, चिड़चिड़ करना, नाराज होना, अगर हमारे मन की क्वालिटी क्या है, इरिटेटेड मन है, उदास वाला मन है, नाराज वाला मन है, कंप्लेनिंग मन है, बातों से भरा हुआ मन है, पुरानी बातों से भरा हुआ मन, ऐसे मन को ले जाकर हम ड्यूटी में ले जाते हैं, बोले ड्यूटी करो, परिवार में संगठन में आओ, बेचारा वो मन कैसा व्यवहार करेगा, ऐसा ही करेगा जैसे होता है आजकल, है ना। तो अपने मन को ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय याद की ताकत से भरे। कुछ लोग ऐसा समझते हैं भगवान का, या तो आध्यात्मिकता कर लो या बच्चे पाल लो, या तो मेडिटेशन कर लो या नौकरी पेशा कर लो, दोनों को अलग कर दिया, इसलिए दोनों में स्ट्रगल हो रहा है, ना नौकरी ढंग से हो रही है, ना परिवार ढंग से संभल रहा है, ना ईश्वरी याद आ रहा है। ईश्वर की याद किस लिए है? परिवार छोड़ने के लिए नहीं है। ईश्वरीय याद किस लिए है? नौकरी छोड़ने के लिए नहीं है, फिर क्या फायदा? वो नौकरी को ठीक से करने के लिए है। हाँ, भगवान ट्रांसफर नहीं कराएगा, नौकरी में इंटरफेयर नहीं करेगा, भगवान प्रमोशन नहीं कराएगा, ये काम भगवान के नहीं है। मकान बना दो, लेंटर कर दो, गाड़ी दे दो, ये कर दो, एग्जाम पास करा दो, जो काम इंसान करता है वो भगवान नहीं करता है। फिर भगवान और इंसान में अंतर ही क्या रहा? ये सब काम तो हम खुद भी कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए जो मन की स्थिति चाहिए ना हमको, बेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, बेटर फोकस, मन की शांति, स्थिरता, शक्ति, मनोबल, सकारात्मकता, हिम्मत, करेज, जो ये चाहिए ना, मन की शक्तियां चाहिए, वो ईश्वर से मिलती है। स्पष्ट हुआ ना? इसलिए भगवान ना बच्चा देगा, ना एग्जाम पास कराएगा, ना लेंटर डलवाएगा, ना गाड़ी दिलवाएगा। जो काम इंसान करता है वो भगवान का नहीं है, ठीक है? तो प्यार से ईश्वर को याद करना। आप बताओ, आपके बच्चे को जब तक खाना नहीं मांगेगा, रोएगा नहीं और आपको चढ़ावा नहीं देगा, तो आप खाना नहीं दोगे क्या उसको? नहीं दोगे? जब तक बच्चा स्कूल की चीजें नहीं मांगेगा, कॉपी पेन नहीं मांगेगा, नहीं दोगे क्या? जब तक वो कपड़े मांगे नहीं, तब तक दोगे नहीं क्या? ऐसा नहीं है ना। आप माता पिता हो, अपने बच्चों की जरूरतों को पहले से जानते हो, उसके पूछने से पहले आप उसकी हर जरूरत को पूरा करते हैं, ऐसा ही है ना। और वो भगवान नाम की शक्ति है, ईश्वर है, उसको हम बार बार याद दिला रहे हैं, मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम, उसको नहीं पता क्या? एक एक बार हम आत्मिक स्वरूप में उसके सामने इमर्ज होते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, उसको हमारा अगला पिछला सब स्पष्ट होता है, उसको सब पता है, उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, उसको सब पता है। इस समय हम किस बात से गुजर रहे हैं, किस बात के लिए जा रहे हैं, कौन सा टेस्ट देने जा रहे हैं, कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, क्या होने वाला है, मेरे जीवन में क्या बदला, उसको सब पता है। उसको सब प्यार से सिर्फ याद करो, याद से शक्ति मिलेगी। उसको परिस्थितियां सुनाने की जरूरत नहीं है, वो भगवान है वो, ठीक है ना? एग्रीड? ठीक लगा आपको? जरूरी नहीं है मैं हम जो कह रहे हैं वो आपको मानना है, पर आपका मन आप खुद टटोल के देखो, अपना विवेक यूज करिए, है ना? तो ईश्वर को उसके सत्य स्वरूप में हमें याद करना है, ठीक है? तो परमात्मा का जो सत्य स्वरूप है उसका एक नाम भी है, हम आपको नाम भी सुनाते हैं, क्योंकि जैसे ईश्वर का रूप किसी धर्म से संबंधित नहीं है, क्योंकि कहा ना, भगवान ने कभी धर्म नहीं बनाए थे, धर्म तो इंसान ने बनाए हैं। और धर्म का अर्थ आपको पता है, धर्म शब्द जो है ना, उस शब्द का अर्थ जानते हैं? आप में से कई लोग जानते होंगे, कौन जानता है धर्म जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? धर्म माना राइटियसनेस, ओके। हाँ, वो राइटियस कब बनता है आपको पता है? धर्म जो शब्द है उसका अर्थ होता है धारणा, धारणा। किसी धर्म का पालन करने का अर्थ है राइटियस अर्थात श्रेष्ठ कर्म की धारणा करना। हर धर्म हमें राइट कर्म करना सिखलाता है, वैल्यूज की शिक्षा देता है, ऐसा ही है ना? क्योंकि परमात्मा ने हर मनुष्य, देखो भगवान कभी एक धर्म का नहीं, उसका एक स्वरूप भी ऐसा है कि जो हर धर्म में उसके एक स्वरूप की मान्यता है, उसके सत्य स्वरूप की मान्यता हर धर्म में सेम है। ऐसे ही उसका एक नाम भी ऐसा है, जिस शब्द के अर्थ को अगर कोई समझ जाए तो कोई भी धर्म की आत्मा प्यार से स्वीकार करेगी। उसका नाम क्या है? सदा शिव। अब आपको लगेगा ये तो हिंदू धर्म से संबंधित नाम है, ये तो हिंदू धर्म का दिया हुआ नाम है। आपको पता है शिव शब्द जो है ना, वो किसी भी धर्म का दिया हुआ नहीं है और ना ही वो किसी धर्म से संबंधित नाम है। शिव एक संस्कृत का शब्द होता है और संस्कृत का एक शब्द जो शिव कहलाता है, उस शब्द के दो अर्थ होते हैं, दो मीनिंग होता है, वर्ड मीनिंग। वो मीनिंग क्या है? शिव शब्द का पहला अर्थ होता है कल्याणकारी, अर्थात बेनिफेक्टर, बेनिवोलेंट। अब ये तो हर धर्म की आत्मा को पता है कि ईश्वर कल्याणकारी ही होता है, ईश्वरीय शक्ति तो अकल्याण नहीं कर सकती ना कभी भी। तो जो शक्ति सदा ही कल्याण करती है वो सदा शिव है, ठीक है। और दूसरा, शिव शब्द का दूसरा अर्थ होता है बिंदु, पॉइंट, डॉट, क्योंकि वो परमात्म शक्ति का सत्य स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट है, एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है, ज्योतिर्मय बिंदु है, इसलिए उसका नाम है शिव। आपने ये सदा शब्द किसी और के साथ सुना है? ये वाला शब्द सदा राम जी, सदा देवी माँ, सदा कृष्ण, सदा क्राइस्ट सुना है? नहीं। सदा शिव सुना है? सुना है। क्यों? क्योंकि जो सदा ही शिव है, अर्थात सदा मतलब अमित, अविनाशी, अपरिवर्तनशील है, उसको कहेंगे सदा शिव। सदा ही कल्याणकारी है, सदा ही पॉइंट ऑफ लाइट है, उसका रूप कभी नहीं बदलता, सदा ही सोर्स ऑफ एनर्जी है, कभी रूप परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। तो जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं, यहां पर इस ब्रह्म कुमारी संगठन में हम लोग ईश्वर को जब याद करते हैं या उच्चारण करते हैं शिव शब्द को, तो उस शब्द के साथ एक और शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे भाई सब ने भी इंट्रोडक्शन में कहा बाबा, हम भी कहते हैं शिव बाबा। और बाबा का शब्द क्यों यूज करते हैं? बाबा माना पिता। यहां कोई मनुष्य रूपी बाबा नहीं है, कोई ऋषि नहीं, मुनि नहीं, विद्वान नहीं, पंडित नहीं, गुरु नहीं, हम भी गुरु नहीं है। हम मनुष्य आत्मा भी, प्रकाशमय शक्ति भी, उस परमात्मा शिव बाबा की संतान है, निराकार शिव पिता की संतान है, जैसे आप आत्माएं हो। लेकिन हम बाबा शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि जब जब हम ये बाबा शब्द यूज करते हैं तो हमें बार बार अपने मन को स्मृति आती है कि मैं किसको याद कर रही हूं, मैं अपने सत्य पिता को याद कर रही हूं। योग लगाने के लिए, किसी को याद करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि उसके साथ हमारा संबंध क्या है, नहीं तो वो याद नहीं आता है ना। तो पिता को पिता रूप में याद करना चाहिए, तब क्या होगा, कभी भी जब भी जीवन में कोई परिस्थिति आएगी, डराने वाली, सताने वाली, टेंशन वाली, तनाव वाली, तो मन में याद आएगी मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूं ना, मैं तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं ना, वो सर्वशक्तिवान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, मेरा पिता मेरा साथी है, जिसको मैं रोज याद करती हूं। मुझे पता है जब हम संबंध से भगवान को याद करते हैं तो सबसे अच्छी प्राप्ति क्या होती है, पता है? आज देखो लोग भगवान को याद करते हैं ना, फिर भी मन में एक डाउट उठता है। पता है क्या उठता है? आप बताओ क्या उठता है? आज लोग भगवान को याद जरूर करते हैं, भगवान के नाम पे बहुत सारी चीजें करते हैं, गलत वो भी नहीं है, भावना से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, परंतु उनके मन में एक डाउट उठता है, पता नहीं भगवान मेरी सुनता है कि नहीं सुनता, पता नहीं उस तक मेरी आवाज पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही, हमें ही नहीं पता। क्यों ये प्रश्न उठा कि पता नहीं वो सुनता है कि नहीं सुनता, पता नहीं उस तक मेरी आवाज पहुंच रही है कि नहीं, क्यों ये प्रश्न ही मन क्यों उठा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको याद करने के बाद जो मन को शक्ति, शांति, खुशी, आनंद, निश्चिंतता का अनुभव होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है। कहीं वो जो मनोबल का अनुभव होना चाहिए था, वो जो ईश्वर को याद करने से जो प्राप्ति आत्मा को हो रही है, जो मन की शांति होनी चाहिए थी, उसमें कमी है। वो अनुभव की कमी होने के कारण हमें लगता है पता नहीं वो सुनता है कि नहीं सुनता। लेकिन अगर हम ठीक विधि से उसको याद करते हैं, ठीक कनेक्शन जोड़ते हैं, तो हो नहीं सकता कि आपको अनुभव ना हो। एक बार भी नहीं हो सकता कि आपको अनुभव ना हो, हर एक बार अनुभव होगा, हर एक बार। पावर हाउस से कनेक्ट हो जाओ और करंट ना लगे, ये हो सकता है क्या? या ऐसा होता है क्या? हाई वोल्टेज पावर हाउस है, बहुत हाई टेंशन लाइन है, उसको चार पांच बार हाथ लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, दसवें बार में करंट लग रहा है, ऐसा कभी होता है क्या? वो हाई टेंशन है, हाई वोल्टेज है, पावर हाउस है, हर बार करंट लगेगा, हर बार आत्मा को करंट मिलेगी। कौन सी करंट? शांति की, शक्ति की, खुशी की, आनंद की, सुकून की, शक्ति की, मनोबल की, सेल्फ रिस्पेक्ट की करंट मिलेगी। अब आप बताओ, ऐसा वाला ईश्वरीय याद होना चाहिए ना इंसान के पास, करना चाहिए ना, ऐसे ही याद करना चाहिए ना भगवान को। कैसे करना चाहिए? ऐसे ही याद करना चाहिए। हाँ, तब कहेंगे आत्मा को परमात्मा से शक्ति मिलती है। हम जब जब शिव बाबा कह के याद करते हैं, तो हमें बड़े प्यार, स्नेह, शक्ति की अनुभव, और कभी मन फिर प्रश्न नहीं उठाता, हमेशा मन, ये मन को एक निश्चिंतता रहती है, कोई भी बात आती है ना, कुछ भी होता है, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, शिव बाबा साथ है ना, मैं बाबा को हर समय साथ लेके चलती हूँ, बाबा मेरे साथी है, हमेशा मन को एक सहारा अनुभव होगा, वो मेरे साथ है, कुछ गलत हमारे साथ नहीं हो सकता, मेरा साथी मेरे साथ है। मन को ये भरोसा होता है, मन को विश्वास होता है, क्योंकि मन को अनुभव होता है। कभी हम असहारा, बेसहाय महसूस नहीं करेंगे। जब हम अकेले होते हैं तो मन डरता है, जब साथी ही इतना बलवान हो तो डरेंगे क्या? डरेंगे क्या? डर खत्म हो जाएगा। तो इसलिए भय मुक्त होकर के जीवन को जीना है, लेकिन भय मुक्त होने के लिए ईश्वर को अपना साथी बनाकर आप ड्यूटी भी करो, घर परिवार में व्यवहार भी करो, फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। कभी हम कंप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा, हम लोग बचपन में स्कूल में एक बहुत अच्छी बात सीखते थे, आप लोग, आपको भी याद होगा, जब हम और आप सब छोटे हुआ करते थे तो स्कूल में टीचर ब्लैक बोर्ड में एक लाइन ड्रॉ करती थी, कहते थे इसको बिना हाथ लगाए छोटा करना है, इस लकीर को हाथ नहीं लगा सकते पर इसको छोटा करना है, क्या करते थे? ऐसे ही आज बहुत सारी जीवन में परिस्थितियां ऐसी हैं, बहुत जटिल है, उसको आप हाथ ही नहीं लगा सकते, कुछ नहीं कर सकते उसका। आज कई हर घर में ऑलमोस्ट एक आत्मा ऐसी बैठी है जो सबको तंग कर रही है बिना किसी कारण के, है ना? हर ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई, दूर या नजदीक वाला तो कोई ऐसा है जो इतना प्रॉब्लम क्रिएट करती है आत्मा, कुछ ना कुछ दिक्कत करी रही है, क्या करे, उसको आप हाथ ही नहीं लगा सकते, तो बड़ी लकीर खींच दो, मतलब अपने मन की स्थिति को उनकी मन की स्थिति से बेहतर बनाओ, अपनी सकारात्मकता को बेहतर करो, अपने मन की ऊर्जा को बढ़ाओ, अपनी सोच को उठाओ, अपने मन को ज्यादा शक्तिशाली बना दो, उनके स्तर पर नहीं रहो, नहीं तो हम भी उन जैसे बन जाएंगे एक दिन। तो क्या करें बड़ी लकीर के लिए? उस बड़े बाबा से जुड़ना पड़ेगा, अपनी आत्मा को परमात्मा से कनेक्ट करो, चार्ज होने दो बैटरी। एक दूसरे से हम चार्ज नहीं हो सकते हैं। आज लोग सोचते हैं इनसे बात करके थोड़ी सी हमें शांति मिल जाए, इनसे मिल करके थोड़ी सी खुशी मिल जाए, इनसे बात करके कुछ हो जाए, सॉल्यूशन मिल जाए। चाहे हम किसी से कितनी भी बातें कर लें, किसी की कितनी भी सुन लें, जीवन भर चार्ज नहीं कर सकते, सदा काल की चार्जिंग नहीं हो सकती। सदा काल की चार्जिंग तो एक ही भर सकता है हमको, हमारा पिता, जिसको हमारी आत्मा का अगला पिछला सब कुछ पता है। वो कहता है बच्चे, हर आत्मा को कहता है बच्चे, मुझ पिता को अपने सत्य, अपने को आत्मा समझ मुझ पिता को याद करो, मेरे सत्य स्वरूप को याद करो, तो आपकी आत्मा की गुण और शक्ति बढ़ती है। ठीक है, अभी याद करें। अच्छा, अगर वो हमारे अंदर नहीं है, एक और लास्ट बात, शायद कल भी आपको जब आत्मा का चैप्टर कराया होगा तो आत्माओं का घर कहाँ दिखाया था? परम धाम, शांति धाम, है ना। देखो, हम सबका भी जैसे शरीर का, हर शरीर का एक घर होता है ना, कोई दिल्ली से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, ऐसे ही हर आत्मा। अब देखो, माता पिता और बच्चे एक ही घर में रहेंगे ना, अलग अलग घर में थोड़ी रहते हैं। तो अगर हम आत्मा परम धाम निवासी हैं, हर धर्म की आत्मा, क्योंकि धर्म तो यहां शरीर लेने के बाद मिला ना, उससे पहले तो वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं थी। आत्मा तो शांति ही उसका एकमात्र धर्म है। तो वो जो आत्मा परमात्मा की संतान है, वो परमात्मा के घर से जब नीचे आई थी, माता के गर्भ में प्रवेश होकर उसको एक शरीर मिला था, उस शरीर का जो जन्म, वो आत्मा जब जिस परिवार में आई, उस परिवार की जो मान्यता थी, उसको वो धर्म कहलाया गया, मिल गया। लेकिन उससे पहले जो आत्मा आई थी, उसका धर्म क्या था? उसका धर्म शांति था, क्योंकि वो शांति के सागर की संतान है, वो शांति धाम से आई हुई है, है ना। तो हम सब एक घर के निवासी हैं ना, हम सब परम धाम निवासी आत्माएं हैं, और हमारा पिता परमात्मा शिव बाबा भी, जो हर धर्म की आत्मा का एक पिता है, हिंदू के शरीर में बैठी हुई आत्मा का भी पिता शिव बाबा है, मुस्लिम की शरीर में बैठी हुई आत्मा का भी पिता शिव बाबा है, क्योंकि वो नूर के रूप से याद कर रहे हैं। आज किसी भी धर्म की आत्मा ले लो, कोई ग्रंथों से याद कर रहा है, कोई मंत्रों से याद कर रहा है, कोई कुरान से याद कर रहा है, कोई शास्त्रों से याद कर रहा है, याद तो उस तक ही पहुंच रही है ना, उसे एक पिता को ही तो मिल रही है ना, पहुंच रही है ना उस बच्चे की याद। तो हर धर्म की आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। और सबसे बड़ा अंतर देखिए, मनुष्य आत्मा जो होती है ना, वो इस धरती पर एक भी अगर कोई देहधारी है, माना जिसका कोई शारीरिक आकार है, जिसका देह है, वो आत्मा पुण्य आत्मा हो सकती है, पवित्र आत्मा हो सकती है, देव आत्माएं भी हो सकती हैं, संत आत्माएं हो सकती हैं, महान आत्माएं हो सकती हैं, पूज्य आत्माएं हो सकती हैं, और अगर कोई पाप करने वाली आत्मा होगी तो पाप आत्मा भी हो सकती है। पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, पवित्र आत्मा, महान आत्मा, संत आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, ये हो सकते हैं, पर परमात्मा कोई नहीं हो सकता, वो तो एक ही है। आपने कभी ऐसा सुना है, पुण्य परमात्मा, पवित्र परमात्मा, पाप परमात्मा, कभी सुना? इसका मतलब हमारे अंदर परमात्मा नहीं है, आत्मा है, जो कभी पुण्य करती है, कभी पाप करती है, कभी पवित्र रहती है, हा? कभी श्रेष्ठ बनती है, श्रेष्ठ आत्मा, पवित्र आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, संत आत्मा, महान आत्मा। ये आत्माओं की वैरायटी है। इस संसार में चाहे कोई कितना ही महान क्यों ना हो, कितना ही श्रेष्ठ क्यों ना हो, परमात्मा नहीं है। वो तो एक ही सत्ता है जिसका नाम सदा शिव है। आप विचार करना, ये चिंतन करने के लिए आपके सामने एक विषय रखा गया है। अब आपकी आत्मा खुद चिंतन करे, आपका विवेक क्या कहता है इस विषय पर, है ना। आज चिंतन की बहुत कमी है संसार में। हमारा जो बिलीफ सिस्टम भी बना हुआ है, आज हमारी बिलीफ सिस्टम्स किस आधार पर बना है। आज शास्त्रों को भी अगर कोई मानता है, चलो शास्त्रों को भी अगर कोई मानता है, तो शास्त्रों का भी कोई अध्ययन कहां कर रहा है। थोड़ा सा हमें इन्होंने बताया, थोड़ा माता पिता ने बताया, थोड़ा स्कूल में बताया, थोड़ा हमने कुछ पढ़ लिया, थोड़ा कहीं सुन लिया, थोड़ा इधर उधर का कुछ कर लिया, जो मुझे ठीक लगा अब मेरा बन गया बिलीफ सिस्टम। मैंने कोई अध्ययन खुद तो किया ही नहीं, और उस बिलीफ सिस्टम को लेकर के हम चल रहे हैं, नहीं यही राइट है, जबकि उस बिलीफ सिस्टम का कोई ठोस आधार तो है ही नहीं। तो इसलिए अपने बिलीफ्स को भी सत्य पर आधारित करो। देखो श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा के ऊपर कितना अच्छा वर्णन किया गया है, कई श्लोक हैं उसके ऊपर। किस लिए दिया गया है? आत्मा न जलती है, न मरती है, न कटती है, न वो मिट्टी नहीं है। आत्मा अजर है, अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी। किस लिए इतना आत्मा का वर्णन आ रहा है? पढ़ पढ़ के रखने के लिए। किस लिए? वो अभ्यास के लिए था, इंसान को याद रहे कि वो आत्मा है। शरीर को धारण करके आत्मा कर्म कर रही है, लेकिन आज कितने लोग आत्मा का अभ्यास करते हैं? कितने लोग करते हैं? नहीं करते ना, इसलिए इसकी जरूरत है। और जब तक हम आत्मिक स्मृति में नहीं अपने को टिकाएंगे, परमात्मा की याद टिकेगी नहीं। ओके ना? हाँ? तो हम सभी, कहने का भाव क्या है, ये सारे विषयों पर हम क्यों बात कर रहे हैं, कि हम सब की सत्य पहचान, हम सभी मनुष्य आत्माएं चमकती हुई मणि समान है। इस समय भी मैं देख सकती हूँ आप सब के मस्तक पर एक बहुत सुंदर प्रकाशमय शक्ति चमक रही है, जो वास्तव में शिव बाबा की संतान है, परमात्मा की संतान है। हम में से कोई भी हम अलग नहीं है, हम सब एक हैं, एक पिता की संतान है, एक घर के निवासी हैं। हम सब कभी एक ही घर में रहा करते थे, एक ही परिवार के हैं, एक पिता के बच्चे हैं। एक है ना कि अलग अलग है? एक है कि अलग अलग है? कौन कौन कहता है हम सब एक हैं, है ना। इसलिए कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब कैसे हो गए भाई भाई? पिता एक होगा तभी तो भाई भाई हुए ना। अलग अलग पिता होगा तो भाई भाई कहां से हुए? तो भाई भाई आत्मा के नाते से हम सभी आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि पिता एक है। चले उस पिता को याद करके आए, मिलके आए परमधाम जाके। चलो यही बैठे बैठे यात्रा करते हैं, मेडिटेशन करें। हाँ चलो सभी सीधे होकर आराम से बैठ जाएं। आपके हाथ में अगर कुछ है तो उसको आजू बाजू रख दीजिए, हाथों को आराम से अपने थाइस पर ऐसे रेस्ट करें, कोई मुद्रा की जरूरत नहीं है। और पांव को भी पुट इट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, धरती पर आराम से अपने पांव को भी रख ले। और मैं जो कुछ शब्द आपको देती जाऊंगी कमेंट्री के रूप में, कानों से सुनते हुए उन शब्दों को आपको मुझे मन से फॉलो करना है, ठीक है। आपका सारा ध्यान आपके अपने विचारों पर होना चाहिए, हम लोग ब्रह्मा कुमारी इसमें आप लोग देख रहे होंगे, दो दिन से शायद अनुभव भी कर रहे होंगे, हम लोग खुली आंखों से मेडिटेशन करते हैं, हम लोग आंखें बंद नहीं करते। कारण ये है कि आंखें बंद इंसान क्यों करता है पता है? वो शटर डाउन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता है अगर खुली होंगी, अभी हमने अपने मन को ये अभ्यास नहीं कराया हुआ है, इसलिए क्या होगा, मन आंखों के सामने जो चीजें हैं, जो व्यक्ति है, जो भी कुछ है, सीन है, मन उसके पीछे चला जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए हम आंख बंद करते हैं। लेकिन आप सोचो, अगर किसी दिन कोई बात हो जाए किसी के साथ, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, कोई टेंशन हो गई, उस दिन मन में वो बात बैठ गई है, अब चाहे आंखें बंद करा लो, खुलवा लो, मेडिटेशन तो होने वाला नहीं है, क्योंकि मन को मेडिटेशन करना था और वो मन में ही बात बैठ गई है। तो खुली आंखों से करने का अर्थ है चलते फिरते उठते बैठते भी हम मेडिटेशन कर पाए। हमारे मन को इतना ट्रेनिंग हमको देना है, ठीक है? धीरे धीरे आराम आराम से हो जाएगा। टेक इट वेरी इजी, जितना होता है उतना करो, नहीं होता है कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक, तो अभी स्क्रीन पर जो चित्र है ना, उस चित्र पर आप अपनी आंखें सिर्फ टिकाएंगे और अपनी आंखों को टिका करके जो शब्द मैं आपको देती जाऊंगी उस शब्द को सुनते हुए मन से उन शब्दों के आधार पर चित्र बनाना, मन में विजुअलाइज करना बुद्धि से, क्योंकि मन बुद्धि हमारा देखता है। तो मन और बुद्धि को उन शब्दों को चित्र बनाकर देखना, विजुअलाइज करना और उसको फील करने का प्रयास करना। ओके, चलिए। अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तो हो सकता है आपको अपने विचारों पर ध्यान न रहे, इसलिए स्क्रीन पर देखेंगे तो अच्छा है। कमर सीधी रखें, गर्दन सीधी रखें, सामने स्क्रीन पर अपनी आंखों को सिर्फ टिकाना है। आप आंखें झपका सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, रिलैक्स। सामने स्क्रीन पर जो मस्तक के बीच आत्मिक शक्ति का छवि चमक रहा है, उस पर अपनी आंखों को टिका लें। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें, कंधा, गर्दन, अपनी ब्रेन की सभी मसल्स, सभी नसों को भी रिलैक्स कर दें। आंखों को शांत, चेहरे की हर मांसपेशियों को रिलैक्स करें, कंधा, गर्दन, पेट, पांव की उंगलियों तक रिलैक्स, ढीला छोड़ दें। ये जो म्यूजिक आप सुन रहे हैं, जो थोड़ा सा भी बढ़ेगा, अब एक बार बाहरी वातावरण से सुनने का प्रयास करें। इस समय बाहर के वातावरण से क्या कोई आवाज ऐसी है जो आपको सुनाई पड़ रही है? ज्ञान सरोवर का यह सुंदर प्रांगण, चारों तरफ हल्कापन, शांति, खुशी है। मन की आंखों से बाहर के इस मौसम को देखें, शाम का समय हो रहा है, इस हॉल में आपको पंखों की आवाज आ रही होगी और हल्का म्यूजिक बज रहा है, ध्यान से सुने। अब इन सब बाहरी वातावरण से अपना ध्यान हटाकर अपनी श्वासों की तरफ ले जाएं, आराम से श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, जैसे आप हमेशा लेते हैं, बिना किसी मेहनत के। जस्ट कीप ब्रीदिंग नेचुरली। आपके श्वासों में जो शांति है, उस शांति को जरा ध्यान से सुने। आपके श्वासों में जो शांति है, ध्यान से सुने। देखें कैसे श्वास आ रही है और जा रही है, आती जाती श्वास के बीच में जो स्पेस है, उस साइलेंस को जरा ध्यान से सुने। अब सामने स्क्रीन पर देखें, जो मस्तक पर मणि चमक रही है, जो तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है, मान लीजिए उस मस्तक मणि के अंदर अभी अभी रोशनी भर जाए, अभी अभी प्रकाश आ जाए, चमकीला प्रकाश। मन की आंखों से देखें, वो मस्तक मणि कैसा दिखेगा? ध्यान से देखें, तीनों आंखों को यूज करें, दो फिजिकल आईज और एक मन का नेत्र, बुद्धि का नेत्र। मन की आंखों से देखें, मस्तक का ये सितारा रोशनी से अगर भरपूर हो जाए, सफेद सुनहरे रंग का प्रकाश, चारों ओर छोटी छोटी प्रकाश की किरणें निकलती हुई, कितना सुंदर स्वरूप है इस मस्तक मणि का। ठीक कुछ ऐसा ही महसूस करें, आपके दोनों नैनों के पीछे, मस्तक के बीच एक ऐसा ही प्रकाश का पुंज, बहुत सुंदर दिव्य सितारा जो सफेद शुद्ध प्रकाश से भरा हुआ है, सदा चमकता रहता है। जैसे एक अंधेरी कुटिया में अगर कोई दीपक जगा दिया जाए, तो उस एक दिए की रोशनी सारे कुटिये को रोशन करती है। महसूस करें, आपका पूरा शरीर वो कुटिये के समान है, जिसके अंदर और तो कोई रोशनी है ही नहीं, एक ही दिया जग रहा है। मस्तक के बीच आपकी आत्मशक्ति का प्रकाश, अपनी आंतरिक ऊर्जा को अनुभव करते हुए महसूस करें। आपके मस्तक के बीच से मन में केवल एक तस्वीर बनानी है, बस मन से एक चित्र देखें, आपकी दोनों नैनों के पीछे एक छोटा सा प्रकाश का पुंज है। महसूस करें, इस समय आसमान के भी पार से, परम धाम से, शांति धाम से ढेर सारी परमात्मा पिता की प्यार भरी, स्नेह भरी, शक्तियों से भरी किरणें सीधे आपके मस्तक मणि को स्पर्श कर रही है। आने दें उन ईश्वरीय किरणों को अपने अंदर, आने दें परम धाम से, परमात्मा पिता से, उस सर्वशक्तिवान सर्वधर्म की आत्मा का पिता, सृष्टि का रचयिता नियंता, जो स्वयं आपके पिता है, उस पिता के सत्य स्वरूप की पवित्र किरणें सीधे आपके मस्तक को लाइट दे रही है। जैसे धूप की कोई किरण जब किसी के चेहरे पर पड़ती है तो चेहरा प्रकाशित होता है। महसूस करें, ज्ञान सूर्य की किरणें, परमात्मा शिव बाबा की किरणें, पवित्र ऊर्जाओं से भरी किरणें आपके मस्तक के बीच बैठी आत्मा को स्पर्श कर रही है। जैसे जैसे परमात्मा किरणें आपको मिलती, आपका मन पहले से ज्यादा शांत, आपकी बुद्धि पहले से ज्यादा एकाग्र, आपके संस्कार पहले से ज्यादा श्रेष्ठ बनते जा रहे हैं। अनुभव करें और संकल्प करें, मन में ये थॉट क्रिएट करें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं सशक्त आत्मा हूं, मैं कमजोर नहीं हूं। संकल्प करें, मैं परमात्मा पिता की डायरेक्ट संतान हूं, मैं ईश्वरीय संतान कभी कमजोर नहीं हो सकती, क्योंकि मैं ईश्वर का बच्चा हूं। अनुभव करें आपकी मस्तक मणि की ऊर्जा पहले से ज्यादा उजागर हो रही है। परमात्मा से मिली हुई अभी अभी लाइट और माइट की किरणें धीरे धीरे आपके ब्रेन से लेकर चेहरा, आपकी आंखों में भी आपकी आत्मा की लाइट, शांति की लाइट भरी हुई है। आपकी आंखों में शांति की ऊर्जा है। आपका चेहरा, गर्दन, कंधा, पीठ, पेट, पांव की उंगलियों तक सारा शरीर आत्मिक शक्ति की किरणें, शांति के वाइब्रेशंस को अनुभव कर रहा है। इस समय आपका तन और मन दोनों ही शांति को महसूस कर रहा है। अगर आपका दिल करे इस अंतर मन की यात्रा के लिए, तहे दिल से परमात्मा पिता को धन्यवाद करे, मन ही मन शुक्रिया अदा करे। मुख से नहीं मन में अनुभव करें शांति। ओम शांति। रब नहीं करो, रब नहीं करो, अभी नहीं, अपने मन की अवस्था को बना के रखिए। अभी अभी आत्मा शरीर के भान से मुक्त होकर परमात्मा की अनुभूति कर रही थी, जल्दी से उसको हलचल में लाएंगे तो मन हिल जाएगा। जब आप प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, योगासन करते हैं, तब भले रबिंग करिए। राजयोग मन का योग है, उसको शारीरिक क्रिया की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप में से कौन कौन परमधाम निवासी परमात्मा से मिल सका आज? कैसा लगा मेडिटेशन? आपको अच्छा लगा? कनेक्ट कर पाए, रिलेट कर पाए? आप में से कौन कौन थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाया? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ये बताओ, अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा? एक्चुअली ये जो अच्छा बोल रहे हो ना आप, ये क्या था? आपको रिलैक्स लगा, आपके थॉट्स को थोड़ी एकाग्रता मिली, ऐसा ही है ना? इसको आप अच्छा कह रहे हैं। और आत्मा जब अपने से कनेक्ट होती है, उसको आत्मा के अंदर भरी हुई गुण को अनुभव करने का मौका मिलता है, आत्मा जब परमात्मा से मिलती है तो परमात्मा के गुणों को भी वो अनुभव करती है, इसलिए उसको अच्छा लगता है, और इसी को योग कहते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। अभी आप लोगों ने जो दीदी से सुना, एक बात थी, एक याद है और एक फरियाद है। तो जहां तक फरियाद की बात है, उसके लिए दीदी ने ही सिखाया है। उन्होंने दो लाइनें बताई कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था वो तुझे मिला है, कोई न छीन पाया है। तो अगर ये आपकी स्थिति बन जाए कि समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था वो तुझे मिला है, कोई न छीन पाया है, तो फरियाद मत करिए, मगर याद जरूर करिए। और जब आप याद करेंगे तो जो अभी आपको सिखाया गया, मैं छोटे छोटे आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आपको जो है ज्ञान मिला, हाँ या ना? सब लोग बोलिए। आपका मन पवित्र हुआ? आपको शांति मिली? आपके मन में प्रेम जागृत हुआ? सुख मिला? जोर से बोलिए। कुछ लोग लगता है सोच रहे हैं कि क्या जवाब दें, मगर अगर आपको सुख मिला है तो आप बताइए, सुख मिला? आपको जो है आनंद मिला? और फिर आपकी आत्मा में शक्ति कुछ जागृत हुई? इतनी कम, दो ही तीन आवाजें आई। तो अगर आपको ये सात चीजें मिल गईं, कौन सी चीजें थी, कहां शुरुआत हुई थी? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति। यही सात चीजें तो परमात्मा जिसका सागर है उसने आपको आपकी आत्मा में भेजा है। हम कहते हैं हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम आत्मा हमारी ये सात चीजें लेके आई थी, और इनको जितना विकसित करते हुए आप चले जाएंगे तो उतना ही होगा, वरना यही कहा जाता है कि कोई सिंहासन चढ़े और कोई बंधे जंजीर। तो जिसने इसको विकसित नहीं किया वो जंजीरों में बंध के जाएगा। जाना सबको है, क्योंकि जिसकी बात की गई शिव पिता परमात्मा, वो हम सबको लेने ही आया है यहाँ पे। वो हमको लेके जाएगा, मगर कैसे ले जाएगा, जैसे हम कर्म करेंगे। तो अगर आपके अंदर विश्वास से सात चीजें जागृत हो गई हैं, तो फिर क्या बचा? तो फिर तो यही कह सकते हैं कि ईश्वर अपने साथ है, और डरने की क्या बात है। जब ईश्वर आपके साथ है तो डर किसका? क्योंकि बहुत मशहूर चीज है, हम कहते हैं कि जो डर गया। तो हम मरने के लिए यहां नहीं आए हैं, हम अपने कुकर्मों को मारने के लिए आए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अभिमान, अगर ये चीजें आपने मार दी यहां पे, तो सब कुछ आपने पा लिया। तो अभी कुछ अगर हम जो जैसा बताया गया, अब हमको क्या करना है, वो याद में रहना है, और ईश्वर की याद में जब हम बैठेंगे तो यही विचार होगा, जैसा भी आपको दीदी ने बताया, कि यही सात चीजें, अंग्रेजी में कहा जाए तो KPP LHBP, नॉलेज, प्योरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, पावर, सात चीजें हैं और कुछ नहीं है। जब ये सात चीजें आपको अगर मिलने लगी, आपके ध्यान में या आपकी याद में आने लगी, तो आपकी आत्मा जो है वो सब कुछ हो गई। और कितना आसान है, KPP LHBP KPP LH, लो हाई ब्लड प्रेशर, बस इतना ही है जो आज हमने सीखा। इसके लिए एक बार पुनः दीदी को ताली बजा करके हम लोग धन्यवाद दें। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।